समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। जी हां, अक्सर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है, मेरी तो किस्मत ही नहीं अच्छी, अब क्या करें, किस्मत में ही नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपना साथ देते हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन निर्भीक और निडर होकर करते हैं, किस्मत भी उनके पीछे चल देती है। तो आइए सुबह खुद से ये वादा करें कि हम कुछ ना करने का दोष किस्मत पर नहीं मढ़कर अपने सपनों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सरबजीत।
Yes, hello Akarshita, and a very warm welcome to our lovely listeners tuned to Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. And Akarshita, you set the note very well, saying that God helps those who help themselves. Indeed, listeners, we have for you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein in the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, and of course some historical information related to today's day, that is 31st of July. So, Akarshita, let's begin the program with the news headline.
Ji. वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। इसमें कई मंत्री, उपमंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि विदेश राज्य मंत्री परबेता मार्गरीटा ने हवाई अड्डे पर श्री चिन्ह का स्वागत किया। श्री जायसवाल ने वियतनाम के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्तों और सदियों पुरानी मैत्री पर प्रकाश डाला। श्री जायसवाल ने कहा कि श्री चिन्ह की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक भागीदारी और मजबूत होगी। श्री चिन्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। श्री चिन्ह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी वियतनाम के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे।
In Kerala, the death toll in the massive landslide that devastated Wayanad yesterday has risen to 135. The death toll is likely to rise further. 186 persons are undergoing treatment at various hospitals in the region. Nearly 200 people are missing. However, the exact number of those missing is yet not known. A joint rescue and relief operation by the Army, Navy, Air Force, NDRF and other agencies has begun. 45 relief camps have been opened in Wayanad, where 3,069 persons have been accommodated. Minister of State for Minority Affairs, George Kurian, reached Wayanad last night and took stock of the relief operations. He interacted with the senior officials of NDRF and the Army. He also visited a relief camp at Kalpeta. Speaking to media persons in Kozhikode, the minister said, search and rescue operations will be intensified from today. He said 3 more NDRF teams and a dog squad of the Indian Army will also join the operations. Kerala Governor Arif Mohammed Khan and Chief Minister Pinarayi Vijayan will be visiting Wayanad today. Meanwhile, the IMD has declared orange alert in the districts of Mallapuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod, indicating the possibility of isolated heavy to very heavy rainfall. The authorities have declared holiday for educational institutions in 12 districts except Thiruvananthapuram and Kollam.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार से शुरू होने वाले राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होने वाला राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि सभी राज्यों के राज्यपाल सम्मेलन में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के एजेंडे में तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता और फोकस क्षेत्रों का विकास शामिल है। प्रचार अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
In a significant move, the Jammu and Kashmir government yesterday appointed a former judge of J&K High Court, Justice Janak Raj Kotwal, as head of a panel set up last month for reservation of other backward classes in urban local bodies of the Union Territory. Our Jammu correspondent reports that retired IAS officer Raj Kumar Bhagwat and former Dean of Sher-e-Kashmir University of Agriculture and Technology, Professor Mohinder Singh Padwal, would be its members. The tenure of chairperson and members will be coterminous with the term of the commission. As per its terms of reference, the commission is empowered to conduct an empirical study and investigation in the context of the representation of backward classes in all local bodies before the upcoming general elections of the local bodies.
मणिपुर में तामेंग लोंग जिले के डिमथान लोंग गांव में हुए भूस्खलन में दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मणिपुर के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश के बाद भूस्खलन से एक घर गिर गया जिसमें एक महिला और दो साल के बच्चे की मौत हो गई।
In Lebanon, capital Beirut's international airport was gripped with confusion and chaos for the third day in a row yesterday as an Israeli airstrike targeted a senior Hezbollah commander in Beirut's southern suburbs late last night. Crowds of travelers were stranded at the airport as airlines cancelled their flights on the back of Saturday's attack on the Israeli-occupied Golan Heights and Israeli retaliation. Tel Aviv is blaming the Lebanese paramilitary group Hezbollah for the attacks which killed 12 people. Hezbollah has denied the blame. German airline group Lufthansa said it would suspend all flights to Beirut until 5th August, which was followed by a similar move from Air France and its subsidiary Transavia, citing the deteriorating security situation in Lebanon. Yesterday, Royal Jordanian Airlines, Greece's Aegean Airlines and Germany's Condor announced cancellations of their flights.
पेरिस ओलंपिक्स में कल निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक्स के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने इंडोनेशिया के फज्जार अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्डियांटो को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष हॉकी में भी भारतीय टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। महिला तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की भजन कौर ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। धीरज बोमर देवड़ा कनाडा के एरिक पीटर्स से हार गए। इससे पहले मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मनिका बत्रा ने फ्रांस की प्रतिका पवाडे को 11-9, 11-6, 11-9 और 11-7 से हराया। महिला मुक्केबाजी में भारत की जस्मीन लंगोरिया हार गई।
In cricket, India defeated Sri Lanka in the final T20 international, making a clean sweep of the three-match series. Put into bat, India managed to post 137 runs for 9 wickets. Chasing the target of 138 runs, Sri Lanka were restricted at 137 for 8 wickets by Indian spinners, taking the game into the super over. Sri Lanka could only manage 2 runs in the super over. Skipper Surya Kumar Yadav hit a 4 in the very first ball, completing the formality of 3-run target. Washington Sundar was named player of the match, while Surya Kumar Yadav was announced the player of the series. The two teams will now move to Colombo for a series of 3 one-day internationals. Indian team will be led by Rohit Sharma in the ODI series. The India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated, extremely heavy rainfall with very heavy rainfalls over northwest, northeast, west, central and southern parts of the country for the next few days. The IMD said, isolated, extremely heavy rainfall is very likely over Karnataka today and over central Maharashtra till Saturday. Many areas across the country will witness very heavy rainfall for the next 4 days. In Delhi, the weather department forecast a generally cloudy sky with heavy rain today, followed by light to moderate rain from tomorrow for the next 5 days. In Punjab, there has not been enough rainfall in various parts during the current monsoon season. However, our correspondent reports that the meteorological department has forecast heavy to very heavy rainfall for today and tomorrow and also issued orange and yellow alerts.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं सरबजीत।
यस आकर्षिता, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द एनुअल एंटी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाइज was conducted at the Chennai airport on Tuesday. Followed by the mock exercise, the second aerodrome committee meeting was convened by the Joint Secretary Annie-Marie Swarna. The Chennai airport stakeholders and officials of various security agencies participated in the meeting. Anti-hijacking mock exercise is being conducted in all the airports in the country every year to check the efficacy and the preparedness to handle such eventuality. More than 32 lakh defence pensioners would benefit from the newly launched Sparsh system. Devika Raghuvansh, IDAS, Controller of Defence Accounts, said that the system improved the pension dispersal mechanism, which was earlier handled by several public sector banks. She said more than 21,000 cases of family pension were resolved in the special grievance redressal month of July. She inaugurated a newly constructed community hall and transit accommodation in Army residential headquarters at Nandmakkam. She spoke to defence pensioners and family pensioners and assured them of prompt redressal and addressed the concerns raised during the interaction. She also distributed cheques totaling Rs 30 lakhs in arrears of pension to various family pensioners. News now from Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has announced to provide rescue and relief operations in Wayanad devastated by landslides. He immediately deputed 2 IAS officers to coordinate with Kerala state authorities. He has informed that the NDRF team in Bengaluru and over 70 army personnel from the Madras Engineer Group have been rushed to the calamity site with rescue and relief operations. Another group of 100 army personnel will be dispatched in 40 vehicles with necessary equipment. Bandipur Green Corridor has been opened for the movement of relief men and material to Kerala. Medical aid, hospital facilities and buses are positioned in HD Kote bordering Kerala. The Public Works Department in Karnataka has deputed its JCBs, cranes and other heavy vehicles to clear the debris in Wayanad. The Bengaluru-Wayanad National Highway 766 passing through Gundlupet has been blocked and the travellers are advised to use the Gundlupet-Bandipur-Gundar route to reach Kerala. The government hospitals in Mysuru, Chamrajnagar have made preparations to receive the injured from Wayanad for treatment. Karnataka State Power Minister K.J. George has informed media persons in Bengaluru yesterday that the state currently generates 250 million units of power every day and consumes 180 million units. The surplus power of 20 million units are returned to Punjab and Uttar Pradesh under the barter system. The remaining 40 to 50 million units of surplus power is sold in the open market, thereby generating revenue. The Telangana state government has introduced the Young India Skill University Public-Private Partnership Bill 2024 in the Assembly. Legislative Affairs Minister D. Sridhar Babu tabled the bill in the House. The proposed Skills University is set to be established in collaboration with private organizations, focusing on delivering comprehensive skill training and job opportunities to the youth. The foundation stone to establish the Young India Skill University in Mucharela in Rangareddy district is likely to be laid in a day or two by Chief Minister A. Revant Reddy. To be established with an estimated cost of 100 crore rupees, it will be set up on 50 acres. The Skills University will offer 17 courses and train 20,000 students every year, with 2,000 to be identified in the first year. A total of 17 priority sectors have been identified, including pharma, construction, banking and financial services, e-commerce and logistics, retail, animation, visual effects, gaming, among others. Telangana Governor Designate Jishnu Dev Verma will take oath as the Governor of State this evening at Raj Bhavan in Hyderabad. The state administration has made all arrangements for the ceremony to be held this evening at 5:03 p.m. Jishnu Dev Verma, who served as Deputy Chief Minister of Tripura State from 2018 to 2023, was appointed the new Governor of Telangana a few days ago, replacing the current Governor, C.P. Radhakrishnan, who has been appointed as Governor of Maharashtra. And Akarshita, what's the news that you're going to share with the listeners today?
जी और अब आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से खबरें. सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद नगर निगम रविवार से ही लगातार कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान जिन कोचिंग सेंटर्स में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है. रविवार से शुरू इस अभियान में अभी तक 19 कोचिंग संस्थानों को सील किया जा चुका है. वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली कोचिंग हादसे के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से मामले की जांच कराए. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों के नियमित संचालन को लेकर कानून बनाने की मांग की है. पत्र में सांसद श्री सिंह ने कहा कि कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए उचित कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि दिल्ली के कोचिंग संस्थान जैसी घटना दोबारा न हो. श्री सिंह ने आरोप लगाया कि ये कोचिंग संस्थान लाखों रूपये की फीस लेने के बाद भी छात्रों को जर्जर इमारतों में बैठने के लिए मजबूर करते हैं. वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार को विद्यालयों की तरह कोचिंग संस्थानों के लिए भी नियम बनाना चाहिए. दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने कल राजधानी के कालिंदी कुंज क्षेत्र में 5 किलोमीटर लंबी ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन किया. इस अवसर पर प्राधिकरण द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किए गए. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजधानी के लिए 320 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से लोगों को और राहत मिलेगी और इनसे प्रदूषण भी नहीं होगा. और आइए अब जानते हैं मुंबई की खबरें. महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम राजभवन मुंबई में एक आधिकारिक समारोह में पद की शपथ लेंगे. इस बीच राज्य सरकार ने राजभवन में महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को विदाई दी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ राज्यपाल और उनकी पत्नी रामबाई बैस को शॉल, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने मंगलवार को भारतीय पूंजी बाजारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट का अनावरण किया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसिव फंड्स को समर्पित भारत की पहली वेबसाइट पेश की. रिपोर्ट में तकनीकी नवाचारों और सुधारों पर प्रकाश डाला गया. नई जारी की गई रिपोर्टों में प्रमुख तकनीकी प्रगति और नियामक परिवर्तनों को शामिल किया गया, जिन्होंने भारतीय पूंजी बाजारों को प्रभावित किया है. महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कल कौशल आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. और अब आइए जानते हैं कोलकाता से कोलकाता की खबरें. राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण और बागवानी उद्योग को विशेष महत्व दिया जा रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार का संबंधित विभाग 9 अगस्त से 11 अगस्त 2024 तक कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में खाद्य और फल महोत्सव का आयोजन करेगा. इस महोत्सव में पश्चिम बंगाल में उत्पादित फलों, सब्जियों और फूलों का प्रदर्शन किया जाएगा. मुख्य केंद्र बिंदु प्रसंस्करण, विपणन और पैकेजिंग पर होगा. और आइए अब जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल जानते हैं। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। यहां सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और सामान्य बारिश होने की आशंका है और कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। तापमान 26 और 32 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Well, Chennai is expected to have rain or partially cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 26 degrees Celsius. Maximum will be around 37 degrees. Bengaluru, the minimum temperature was 21 degrees Celsius. Maximum will be around 27 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperatures will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. And listeners, Indian athletes have registered several wins at the Paris Olympics yesterday. We have a detailed report on this.
Tuesday was another medal-winning day for India's shooting queen Manu Bhakkar at Shatrughn. She teamed up with Sarabjot Singh to claim bronze in the 10-meter air pistol mixed event to create history in what was a red-letter day for Indian sports. She can add to her already astonishing legacy if she makes 3 medals in a row by claiming a podium finish in the 25-meter pistol event. Back in Paris, the Indian hockey team comfortably beat Ireland 2-0 to stay on course for consecutive Olympic medals. In the archery individual rounds at the beautiful and historic Ovali complex, India had a mixed day. While Ankita Bhakat exited in the round of 32 despite a strong performance, Bhajan Kaur starred, shooting brilliantly to make it to the round of 16. But there was heartbreak for Dheeraj Bommadevara as he got knocked out in the round of 32 in a tense shoot-off, both archers shooting at an exceptionally high quality. The dynamic badminton duo of Sat Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty won their second match on the trot to march into the quarters. But all the Indian boxers in action, Amit Panghal, Jasmine Lamboria and Preeti Pawar, lost their respective bouts. Meanwhile, rower Balraj Panwar got knocked out in the quarterfinals despite a valiant effort. He will play in the classification matches today. Indian sportspersons would aim to build on the momentum given by Bhakkar's historic success in sports ranging from badminton to shooting, table tennis to archery, as well as dressage. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani from Paris.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
Well, on this day in the year 1658, Aurangzeb was appointed as the Mongol emperor, and in the year 1861, on 31st July, Cherrapunji in Assam received 9300 millimeters of rainfall, setting a world record.
और 1998 में सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में संपन्न।
1914, oil was discovered in Lake Maracaibo, northwestern Venezuela, the largest lake in South America. 1919, 31st July, the Weimar Constitution establishing the German Republic was adopted. On this day in the year 1933, Mahatma Gandhi was arrested from the Sabarmati Ashram and imprisoned without trial. 1992, sitar maestro Pandit Ravi Shankar won the Magsaysay Award.
और आज के दिन ही 2004 में आर्थिक सहयोग मंच बिम्स्टेक का नाम बदलकर बंगत क्षेत्र किया गया था और 2005 में उज्बेकिस्तान ने अमरीका को अपने सैनिक अड्डे हटा लेने का आदेश दिया। वहीं 2007 में आज के दिन ही भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर सुधीर पारीख को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया। और आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
Yes, Akarshita, let's begin this segment with remembering Alan Octavian Hume. He was a member of the Imperial Civil Service. Today is his death anniversary. Hume was a political reformer, ornithologist and botanist who worked in British India. In fact, he was one of the founders of the Indian National Congress. A notable ornithologist, Hume has been called the father of Indian ornithology. And listeners, today is also the death anniversary of Udham Singh, the great revolutionary and a well-known figure of the Indian independence movement. Born as Sher Singh while in custody, Udham Singh used the name Ram Mohammad Singh Azad. He is also referred to as Shaheed-e-Azam Sardar Uddham Singh, meaning the Great Martyr.
और श्रोताओं, आज मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि है। वे हिंदी सिनेमा जगत की श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे, जिन्होंने करीब 40 साल के फिल्मी गायन में 25,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई थी। इन्हें शहनशाह ए तरन्नुम भी कहा जाता है और करीब 15 वर्ष की उम्र में उन्हें संयोगवश सार्वजनिक रूप से अपने गायन कौशल के प्रदर्शन का मौका मिला, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रफी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचानकर उन्हें फिल्म अनमोड़ घड़ी में रफी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल्लगी में इस दुनिया में आए दिलवालों गाना गवाया, जो बहुत सफल सिद्ध हुए। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत हैं चौधरी का चांद, छू लेने दो नाजुक होठों को, दिल के झरोखे में और खिलौना जानकर। उन्हें 1965 में पद्मश्री और 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनके ये गीत।
चौधरी का चांद आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी का चांद हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें।
एंड लिसनर्स, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग आशुतोष दास, अ सिग्निफिकेंट फिगर इन मॉडर्न बंगाली लिटरेचर। Through his poetry and insightful writings, Das captured the essence of human emotions and social issues, leaving a lasting mark on Bengali literature.
हमारी मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। ये पंक्तियां हैं मुंशी प्रेमचंद की। आज भारतीय उपन्यास, सम्राट कहानीकार तथा प्रसिद्ध लेखक व अपनी रचनाओं से समाज में व्याप्त समस्याओं को दर्शाने वाले आधुनिक हिंदी के पितामह प्रेमचंद की जयंती पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। उनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक का है। ये कालखंड भारत के इतिहास में बहुत महत्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। उन्होंने कहा था, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। उनकी मुख्य रचनाएं थी गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा। और श्रोताओं, आज मुमताज की जयंती भी है। वो 60 और 70 के दशक की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज को उनके समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना गया है। मुमताज ने अपने समय के सबसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और महज 13 साल की उम्र में मुमताज ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग।
ए मुझे वाले, पैसे निकाल, पैसे निकाल।
और पैसे कैसे? पैसे
गर्म गर्म मलाईदार दूध के, जो आधा तेरे पेट में है आधा मूंछों पर।
ओए हमसे पैसे मांगती है? ओए जब मैं पठानकोट में था हमसे कोई पैसे नहीं मांगता था।
तभी तो तुझे पार्सल करके यहाँ भेजा।
ओए छोकरी, तमीज से बात कर, ये बहुत कड़क आदमी हो।
क्यों भाई, तू क्या लॉन्ड्री से धुल कर आया क्या?
बाउंड्री में रहकर बात कर, नहीं तो हवाला हाथ में बंद कर दूंगा।
तू चुपचाप पैसे निकाल, वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी।
ओए बकवास बंद कर, कितने पैसे हुए तेरे?
आया ना तू लाइन से।
मुमताज ने उन्होंने अपनी फिल्म, उनकी आखिरी फिल्म नागिन थी और उन्हें फिल्म खिलौना के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए आकर्षिता और सरबजीत को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
यस लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड एज वी शैल बी हियर विद द हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग एंड हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।